अबरानियों का नाम पौलुस का खत उसका 12वां बाब 14वीं आयत से खुदा के कलाम की तलावत सुनिए। सब के साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावन को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं और ना कोई हरामकार या ऐसाओ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के बस अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला। क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। गोश ने आंसू बहा बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज खुदा के कलाम की जो सच्चाई खुदावन ने मेरे दिल में डाली है उसका अनवान है तब्दीली, चेंज। अबरानियों के ख़त के 12वें बाब की 17वीं आयत में एक तारीखी वाक़या अहद अतीक से दोहराया गया, एक बड़ी शख्सियत ऐसाओ का ज़िक्र किया गया और उसके बारे में बताया गया कि उसने एक वक़्त के खाने के इवज अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला। और इसके बाद रो रो कर आंसू बहा बहा कर जब उसने अपनी नियत को तब्दील करने की कोशिश की तो उसको नियत तब्दील करने का मौका ना मिला। आज की दुनिया में और पाकिस्तानी सियाको सबाक में तब्दीली का लफ्ज़ हमारे वास्ते कोई नया लफ्ज़ नहीं है। आज की दुनिया में अक्सर औकात ये लफ्ज़ हमें अपने मुआशरे में सुनने को मिलता है। मुझे याद पड़ता है अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा जब वो पहली दफ़ा इलेक्शन जीते और उनकी ताजपोशी हो रही थी या उनको मुकर्रर किया जा रहा था इलेक्शन जीतने के बाद कुर्सी सदारत पर बैठने के लिए, तो उन्होंने अपनी पहली ही तकरीर में कहा द वर्ल्ड नीड्स चेंज, दुनिया को तब्दीली की ज़रूरत है। द वर्ल्ड नीड्स चेंज एंड वी विल ब्रिंग द चेंज। उन्होंने कहा दुनिया को तब्दीली की ज़रूरत है, अब मैं सदर बनकर आ गया हूँ, अब हम ये तब्दीली लाएंगे। इंसानी तारीख में एक और बड़ा लफ्ज़ हम सुनते और पढ़ते हैं और वो है इनकलाब। इनकलाब का मतलब भी तब्दीली ही होता है और इनकलाब के साथ कत्लो गारत, जुल्म, खून रेजी जुड़ी हुई है। सो इंसानी तारीख में जितने इनकलाब आए हैं उनके पीछे एक ही नियत है, तब्दीली लेकर आनी है, हुक्मरान को बदलने, डिक्टेटर को बदलना है, बादशाह को बदलना है, उनका तख्त उलटना है। हमें ये हुक्मरान पसंद नहीं है। और इंसानी तारीख में ये तब्दीली जिसे सियासी जबान में इनकलाब कहा जाता है, इंसानी तारीख भरी पड़ी है अपनों ही ने अपनों के खिलाफ ऐसी साजिशें तैयार की, साथियों को साथ मिलाया और बादशाहतों और हुकूमतों में तब्दीली लाने की भरपूर कोशिशें की। कुछ कामयाब हुए, कुछ मारे गए, कत्ल हुए, कैद हुए, फांसी चढ़ गए, सजाएं उनको हो गईं। अपने मुल्क के सियासी मंजरनामे पर अगर हम गौर करें तो हमारे मौजूदा वजीर आजम ने भी अपने इलेक्शन की मुहिम में तब्दीली का नारा लगाया है कि इस मुल्क को तब्दीली की जरूरत है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ये नारा सुनने में मिलता रहा, तराने लिखे गए, गाए गए और कहा गया कि इस मुल्क में तब्दीली की जरूरत है और अगर हमारी पार्टी बरसर इक्तदार आ गई तो हम तब्दीली लाएंगे। और फिर ये कहा गया तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ गई है। हमें पुराना पाकिस्तान नहीं, हमें नया पाकिस्तान चाहिए। इसका मतलब है पुराने हुक्मरान अच्छे नहीं थे, मुल्क के वफादार नहीं थे और वो बददियानत थे और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते रहे हैं। हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम तब्दीली ला के छोड़ेंगे। इन दिनों में पाकिस्तान की 11 सियासी जमातों का इतिहाद और हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक शुरू है उसके पीछे मकसद तब्दीली है। ये हुकूमत तब्दील होनी चाहिए, हमारी तहरीक कामयाब होगी, हम इस हुकूमत को बदल कर या तब्दील करके छोड़ेंगे। और यहाँ तक दावे हो रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी तक ये हुकूमत तब्दील हो जाएगी। ये सोच ना सिर्फ मुआशरे में, आज के बुरे जहान में, सियासी मंजरनामे में ये सोच और ये आवाज़ और इसकी ज़रूरत की गूंज हमें मिलती है, बल्कि इसका जिक्र हमें कलीसियाओं में भी मिलता है। पादरी साहब को चेंज करना, बिशप साहब को चेंज करना, किसी अदारे के हुक्मरान उसके किसी अदारे के सरबराह को तब्दील करना, ये कलीसियाओं में भी देखा जा सकता है। चंद माह पहले एक कलीसिया में झगड़ा था इंतज़ामिया का और बहुत पुराने मेंबरों का, मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारी लगाई गई उनकी सुलह करवाने की। मैं गया और हमारे सबसे प्यारे वफादार और सबसे प्यारे मेंबर जो कि फालिज ज़दा हैं, जिनसे बोला भी नहीं जा रहा था, मुझे कहने लगे पादरी साहब आ गए हो, बस इस पादरी नूं बदलना है, ऐसा नहीं इनू रखना। तो मैं अंदर देख रहा था कि एक आदमी बोल नहीं सकता, फालिज का मरीज है, ना जाने कितने दिन इसने जीना है, लेकिन पादरी के खिलाफ नफरत के इस कदर भरे हुए हैं कि बोला नहीं जा रहा था। मुझे कह रहे कि इस पादरी को चेंज, सानू नहीं है पादरी चाहिए। तो ये रवश ना सिर्फ सियासी दुनिया में हमें मिलती है बल्कि ये हमें कलीसिया में भी कहीं कहीं नजर आती है कि आज का इंसान और मुआशरा एक बड़ी जद्दोजहद और एक बड़ी कश्मकश में मुब्तला है। चीज़ों को बदलना, इंतज़ाम को बदलना, जो उनके ऊपर इख्तियार रखते हैं उनको बदलना, ये रवश आज की दुनिया में हमें दिखाई देती है। और इंसान की एक पुकार कि वो तब्दीली चाहता है वो हमें दिखाई देती है। इसका बड़ा गहरा तल्लुक शादीशुदा जिंदगी के साथ भी है। अज़्दवाजी जिंदगी में भी जोड़े मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। औरत शोहर के रवैये, बर्ताव, सलूक तर्ज जिंदगी के बायस एक प्रेशर के नीचे, एक दबाव के नीचे अपनी शादीशुदा जिंदगी बसर कर रही है और उससे तंग नजर आती है, और वो बहुत सारी बातों में वो अपने शौहर को बदलता हुआ, तब्दील होता हुआ देखना चाहती है। इसलिए वो रोती भी है, वो दुआ भी करती है और वो दूसरों से दुआ की दरख्वास्त भी करती है। कभी कभी वो अपने आप को इतनी हेल्पलेस, बेबस और बंद गली में महसूस करती है कि उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे, और वो अपनी जिंदगी को ख़त्म करना चाहती है। खुदकशी के ख्यालात उसके जहन में गर्दश करने लगते हैं कि इससे बेहतर है कि कुछ भी नहीं बदलेगा, मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ तो इसी में मेरी भलाई है। इसी तरह शौहर जबर के जरिए से अपनी बीवी को सीधा करने की धमकी देते हैं, तुझे मैं सीधा कर दूंगा, और वो उसको सीधा करके अपनी मर्जी के, अपने तर्ज जिंदगी के सांचे में डालना चाहता है। जब वो सीधी नहीं होती तो फिर वो उस पर हाथ उठाता है, वो तलख कलामी करता है, तलख मजाजी से पेश आता है, बदजबानी गाली गलौज पर भी उतर आता है, और फिर वो धमकियां भी देता है, और इन्हीं रवैयों के साथ वो एक नाजुक जरफ का दिल तोड़ता और उसकी नजरों से गिर जाता और उसके दिल के तख्त से उतर जाता है। तो गोया सियासतदान हो, कलीसियाई रहबर रहनुमा, अरकाने कलीसिया हो, शादीशुदा जोड़े हो, तो एक ऐसी कश्मकश, एक ऐसा दुख, एक ऐसी तकलीफ और एक ऐसा चुभा हुआ कांटा जो तब्दीली का तकाजा करता है, उसकी पुकार हमें इंसान अगर खामोश भी रहे तो उसके रवैयों से उसकी गूंज हमें सुनाई देती है। और जो लोग सह सह कर तंग आ जाते हैं वो किसी के सामने अपना दिल खोलते हैं और वो अपने हालात किसी खैरखा हमदर्द इंसान को बताते हैं। इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी अहम बात है, और वो है कि इंसान की बेबसी के सियासतदान मुल्क नहीं ठीक कर सकते, सियासतदान दूसरे सियासतदानों को तब्दील नहीं कर सकते, जाबर हुक्मरानों को बदलना मुश्किल है, बीवी शौहर को ना बदल पाई, शौहर बीवी को ना बदल सका, कलीसियाई अरकान अपने रूहानी पेशवाओं को ना बदल सके, पेशवा अपने मेंबरों को ना बदल सके, देर इज अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, एक ऐसी बेबसी है जिसका इंसान को सामना है और जिसकी बेहतरीन जो मंजरकशी है कलाम की दो आयात में बयान की गई है। मैं हवाले नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वक्त बचाऊंगा, बता देता हूं। सबसे पहला हवाला है यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 13वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदि हो नेकी कर सकोगे। ये एक ऐसी इंसानी जेन को कायल करने के लिए, उसको समझाने के लिए और उसको आईना दिखाने के लिए एक ऐसी मिसाल नबी के दिल में रूहुल कुद्स के वसीले से डाली गई और कहा गया कि जरा सोचो इसराइलियों, क्या एक शख्स एक शख्स की चमड़ी का रंग या चेहरे का रंग एक हबशी की तरह का हो, इंतहाई काला हो, तो क्या वो अपने चेहरे की रंगत को बदल सकते हैं? आज हमारे से कोई नबी ये सवाल करे तो हमारा जवाब क्या आएगा? हम भी यही कहेंगे कि नहीं, जो रंग खुदा ने हमें दिया, भले काला है, गोरा है, गंदमी है, वो हम अपने तौर पर, हमारे पास वो कुदरत नहीं है कि हम अपने चेहरों की या जिल्द की रंगत को बदल सके। और हबशी की मिसाल देकर समझाने की कोशिश की गई। उसके बाद चीता, एक खूनखार जानवर जिसकी जिल्द पर, जिसकी खाल पर कोई एक दाग नहीं होता, बहुत सारे दाग होते हैं। और सवाल किया गया इंसान को समझाने के लिए कि क्या चीता अपनी चमड़ी के ऊपर जो दाग हैं उनको बदल सकता है? तो सादा अल्फाज में हमारा भी जवाब यही होगा कि ना तो हबशी अपने चेहरे के रंग को या अपनी चमड़ी के रंग को बदल सकता, और ना ही चीता अपने कुदरती तौर पर जो उसके ऊपर दाग हैं वो उनको बदल नहीं सकता। तो इन दोनों की मिसाल देके इंसानों को कहा गया कि तुम अपने आप को बदल नहीं सकते, तुम्हें बदलने के लिए क्या चाहिए? उस खुदा की मदद चाहिए। अगर हर शख्स अपने आप को खुद ही बदल ले तो फिर खुदा की क्या जरूरत है? तो हम ये कहेंगे कि इंसान कई तरह की तब्दीलियां लाने के सामने बेबस है, हेल्पलेस है, मजबूर है, नहीं कर सकता, करना चाहता है, होते हुए देखना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता। दूसरी मिसाल हमें रोमियों के खत के 7वें बाब की 14वीं आयत से लेकर 25 आयत तक पढ़ा जाए तो वहां पर बुजुर्ग पौलुस रसूल की सुबाने मुबारक से हम ये पढ़ते हैं, मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूं, मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ हूं, मैं नेकी करना चाहता हूं लेकिन मेरे से नेकी नहीं होती, मैं बुरे काम नहीं करना चाहता लेकिन वो उनसे मैं रोक नहीं सकता किए बगैर, जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो बदी मेरे से हो जाती है, जिस नेकी का मैं कसद करता हूं कि मैं नेकी करूंगा वो मेरे से होती नहीं है। इस पस मंजर में उन्होंने कहा, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, मैं गुनाह से छुटकारा नहीं पा सकता, जो बदी मेरे से बुरा मेरे से हो जाता है वो मेरे बस से बाहर है। मैंने कलाम में यह समझा है कि गुनाह एक ताकतवर पहलवान है। मैंने कलाम के मुतालिया से यह समझा है कि गुनाह एक ताकतवर पहलवान है और उसको खुदा की मदद के बगैर हराया नहीं जा सकता। इसलिए मसीह यीशु का कफारा दरकार था, इसीलिए उन्होंने कहा था मुझसे जुदा होकर तुम, इसीलिए बुजुर्ग पौलुस रसूल फरमाते हैं जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं, यानी मैं बदी से रोक सकता हूं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसकी ताकत लेकर मैं नेक काम कर सकता हूं, जो मुझे ताकत बख्शता है मैं गुनाह के जाति झूलिए से भी जबरदस्त पहलवान को शिकस्त देकर गालिब आने वाली फतेहमंद मसीही जिंदगी, बेऐब और बेदाग मसीही जिंदगी बसर कर सकती हूं, कर सकता हूं, किस बुनियाद पे? जो मुझे ताकत बख्शता है। तो जैसे मैंने बताया कि सियासतदान टकरे मार रहे हैं, उनकी उल्टी सीधी तकरीरें हम सुन रहे हैं, और टेलीविजन पर दिन रात हर तरह की बहस हम सुन रहे हैं, अखबारात में हम पढ़ रहे हैं दुनिया क्या कह रही है। आलमगीर एतबार से सारी दुनिया में और पाकिस्तान में जो माहौल है वो हम देख रहे हैं। शादीशुदा जिंदगी में जो मसाइल हैं और रोज बरोज सर उठा रहे हैं और कहीं कहीं पोशीदा हैं, वो हमारे इदराक से परे नहीं। तो इंसान को हम लाचार, बेबस और मजबूर और हालात के सामने हम हारा हुआ उसको देख रहे हैं। और खुदा के कलाम की ये सदाकत उन पर सादिक आती है कि अगर तो हबशी अपनी चमड़ी को बदल सकता या उसके रंग को बदल सकता या चीता अपने दागों को बदल सकता है, तो तुम भी जो बुराई के या बदी के आदि हो अपने आप को बदल सकते हो। और इसका जवाब ये है, ना हबशी अपनी चमड़ी के रंग को बदल पाया ना बदल पाएगा, और ना चीता अपनी चमड़ी या अपने दागों को बदल सकता है। तो हम इंसान अपने आप में हम बेबस हैं, हमें खुदा की जरूरत है, हमें मददगार की जरूरत है। हम ऐसे गहरे गड़े में गिरे हुए हैं जिसमें हम बाहर निकलने की चीखों पुकार तो कर सकते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसमें से किसी दूसरे की मदद के बगैर, उस कुएं में किसी के रस्सा फेंक के बगैर कि जिसको पकड़ कर हमें बाहर खींच लिया जाए, हम बाहर नहीं निकल सकते। ये अजाज जाता है खुदावंद यीशु मसीह के कफारे को, खुदा बाप को, जिसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर हमें गहरी दलदल में से और सैलाब में से और पानी में से उसने हमें निकाला और चट्टान पर लाकर हमें, जिसका मतलब है महफूज जगह, नजात, वहां लाकर उसने हमें खड़ा कर दिया। जब बुजुर्ग पौलुस रसूल ने यह फरमाया कि हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, कौन मुझे इस मौत के बंद से, गुनाह की मजदूरी मौत है जिसके हाथों में बिका हुआ हूं, कौन मुझे उससे छुड़ाएगा। और अगली ही आयत में, 25वीं आयत में वो फरमाते हैं, मैं खुदा का उसके बेटे यीशु मसीह के लिए शुक्र अदा करता हूं। मैं नहीं अपने आप को छुड़ा सकता था, मैंने तो अपने आप को गुनाह के हाथों बेचा हुआ था, मैं तो नेकी करने की हत्तल वसा कोशिश कर चुका, मेरे से नेकी के बजाय बुराई ही हुई है, मैं नेकी कर ही नहीं पाया। मैंने अंदाजा लगाया है कि नेकी करने का इरादा तो मेरे अंदर मौजूद था, अगर मेरे से नेकी नहीं हुई तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो गुनाह है जो मेरे अंदर बसा हुआ है और जो मुझे मजबूर करता है मेरी अक्ल की शरीयत के साथ लड़कर और मुझे अपनी शरीयत के ताब्या कर लेते हैं। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी। तो सियासतदान बेबस, आम इंसान बेबस, मसीही कहीं किसी हद तक बेबस, गैर मसीही और मसीही शादीशुदा जोड़े बेबस नजर आते हैं। और उनका इलाज जो है वो खुदा के पास है, जिसने मुकाशवा की किताब की एक आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, जो हमारे लिए उम्मीद का पैगाम है। 21 बाब की 5वीं आयत सुनिए, मुकाशवा 21 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया, तब्दीली अगर कोई ला सकता है तो खुदा ला सकता है। जो तख्त पर बैठे है उसका दावा है, देख मैं सब चीजों को शादीशुदा जोड़े हों, खुदा शौहर के रवैये को बदल सकता है। जल्दी से एक दूसरे को छोड़ देने और एक दूसरे से पीछे हटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अज़्दवाजी जिंदगी के आम हालात से तंग आकर बेदिल नहीं होना चाहिए। खुदकुशी के ख्यालात ईमान के सिर पर लगाकर रोकने चाहिए और जल्दी से अलहदगी, सेपरेशन या तलाक लेने या देने की बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि जो तख्त पर बैठा है वो कहता है देख, निगाह तो खुदा की तरफ लगाई जाए। जब देख हम किसी और जगह रहे होंगे, तब्दीली कहां से आई? अब्राहम को, जिसके एक भी बेटा नहीं था, और उसको कहा बाहर निकल, आसमान के सितारों को देख और गिन, अगर तू इनको गिन सकता है, समुंदर की रेत के जरों को गिन अगर तू गिन सकता है, तेरी औलाद इतनी ही होगी, ऐसी ही होगी। हालांकि एक बच्चा भी नहीं था। आज हम देख कहां रहे हैं, जहां जहां हम अपने इंसानी तलोकात और हालात में मजबूर और बेबस हैं, क्या हम हालात की लहरों की तरफ देख रहे हैं जो देखने से हमें डराती हैं कि ये हमें डुबो देंगी? जो तख्त पर बैठा है वो क्या कहता है? देख। मैं कहां देखूंगा, कहां देखूंगी? मैं कहां अपनी आंखें उठाऊंगा, उठाऊंगी? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ, जिन पहाड़ों के ऊपर जिंदा खुदा तख्त नशीन है और एक बड़े बुरज पर से उसकी आंखें तमाम इंसानों को, उनके आंसुओं को, उनके जुल्म सहने को, उनकी बर्दाश्त को, उनकी बेबसी को, उनकी दुआओं को, उनकी मजबूरियों को, उनके कांटों को, जिसका दर्द वो सह रहे हैं, जो आसमान पर तख्त नशीन है उसकी आंख तमाम रुए जमीन पर इंसानों को देखती है। लेकिन क्या सारे इंसानों को मदद मिल जाती है? नहीं। बहुत सारे इंसान अपने हालात ही में गर्क हो जाते हैं और तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जो आलमे बाला की तरफ देखता है, जो पहाड़ों की तरफ देखता है और ईमान रख के ये बोली बोलता है, मेरी कुम्मख वहां से आएगी, मेरे खुदा से आएगी, आसमान पर से आएगी। उन लोगों के साथ वादा देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। सियासतदान भी टिकाने लग जाएंगे, बदकरदार शौहर या बीवी भी किनारे लग जाएगी, नाफरमान सरकश बागी कलीसी रुकन भी एक तरफ हो जाएगा। खुदा ही ये सब कुछ करता है, उसके ऊपर हुक्मरानी है, हर चीज को वो देखता है। तो लिखा जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा देख, देख। लिखा है उन्होंने उस पर निगाह की तो वो बच गए। बनी इसराइल के बारे में, जब बनी इसराइल से खुदा नाराज हुआ तो खुदा ने सजा के तौर पर ढसने वाले या काटने वाले सांप उनमें भेज दिए, दुनिया मरने लगी, अदालत उनकी होने लगी इसराइलियों की। पीतल का एक सांप बनवाकर बलि पर चढ़ाया गया और जिनके अंदर सांपों का जहर समा चुका था उनको कहा इस पीतल की बलि, इस बलि के ऊपर पीतल का जो सांप है इसकी तरफ देखो तो तुम्हारे देखने से, फरमानबरदारी करने से, हुक्म मानने से तुम्हारे अंदर से जहर निकल जाएगा। कई लोगों ने कहा पीतल के सांप की तरफ देखने से जहर कैसे जा सकता है? उन्होंने ना देखा, लेकिन हवाला पढ़े तो लिखा जितनों ने देखा उनके अंदर से जहर जाता रहा, वो शफा पा गए। बल्ली पर चढ़ा हुआ पीतल का सांप यस्सु अल मसीह के कफारे की बाजगश्त है, उसका एक अक्स है, जिन्होंने खुद फरमाया कि जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी तरफ खींचूंगा, और वो मसीह की सलीब है जिसका पैगाम हलाक होने वालों के वास्ते तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है, कुदरत है। सो जिस जिस मामले में भी, मैंने तो चंद का जिक्र किया जो मेरी समझ में आया, जिस जिस मामले में भी हम बेबस हैं, भले वो हमारी औलाद भी क्यों ना हो, ये भी बहुत गुल खिलाती है ना, जिस जिस मामले में हम बेबस हैं, बहनों भाइयों लिख लो अपने दिल की तख्त पर, जो तख्त पर बैठा है वो ये कह रहा है देख खुदा की तरफ देखिए, दुश्मनों की तरफ मत देखिए, लहरों की तरफ मत देखिए, मुर्दा लाश की तरफ मत देखिए, पीछे जो फिरौन अपने रथ तैयार करके हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारा पीछा कर रहा है उसकी तरफ मत देखिए, जिंदा खुदा की तरफ देखिए। जब बहरे कुलजम को अबूर करने का वक्त, उसमें से गुजरने का वक्त आया तो बनी इसराइल कौम के मर्द भी फूट फूट कर रो रहे थे और खादमों के भी खिलाफ थे, बुड़बड़ाते थे, तो मूसा के वसीले से खुदा ने उन्हें फरमाया खामोश हो जाओ, ये रोना धोना छोड़ो, खामोश हो जाओ। और आज खुदावन अपने खुदा की निजात का काम देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा। वो किसको देख रहे थे, डर रहे थे, पीछे फिरौन आ रहा है, आगे समंदर है, दाएं बाएं बुलंद पहाड़ है, अब मौत के सिवा कुछ नहीं, दे वर सो हेल्पलेस डेस्परेट, वो बेचारे फंस गए, मौत के सिवा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा होता कि वो यहोवा पा खुदा को, जो अय्यूब की किताब में लिखा है दिल का अकलमंद और ताकत में जोरावर है, उसको देखते तो फिर खुदा ने अपने खादम के जरिए से उनको पैगाम दिया खामोश हो जाओ और खुदा उनके उस काम को देखो जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। और वही हुआ, उसको कहा तेरे हाथ में क्या है, लाठी है, उसको कहा पानी की तरफ मांग, पानी दो हिस्से हो गया। जिन्होंने कभी बेरे कुलजम की तय नहीं देखी थी, नई जमीन देख ली, नया काम खुदा ने कर दिया, और उसमें से जान बचाकर खुदा की हदायत पर अमल करते हुए वो सलामती से दूसरे किनारे चले गए। जब दुश्मन जिससे डर रहे थे उसने पीछा किया, खुदा ने हुक्म दिया, पानी फिर आपस में मिल गया, और फिरौन की अफवाज रथ घोड़े सब कुछ उस पानी में गर्क हो गए। तो मुश्किल वक्त में खुदा को देखना, इंसानों से नज़र हटाकर अनदेखे खुदा पर निगाह रखना, बीमारी में, कमजोरी में, गुर्बत में, तंगी में, बेरोजगारी में, मुखालफत में, बदनामी में, अल्ज़ाम तराशी में, रूहानी जंग में, और डिप्रेशन में, फिक्रों में, दबाव में, बेबसी में, खुदा की तरफ देखना। जो उसकी तरफ देखते हैं पहला काम तो उनकी ज़िंदगी में ये होता है कि वो मुनव्वर हो जाते हैं, क्योंकि खुदा क्या है, वो नूर है, और वो नूर को पोशाक की तरह पहनता है। वो किसी के हाथ में टार्च हो, अगर जहाँ से वो लाइट निकल रही है उसकी तरफ हम देखें, उसका सामना करें, तो वो लाइट हमारे ऊपर भी पड़ेगी। सूरज की तरफ देखें, उसकी शुआएं हमारे ऊपर भी पड़ेगी। आलम बाला का आफ्ताब जिसकी किरणों में शिफा, उसको देखना। जो देखने में कामयाब हो जाते हैं, जिनका ईमान और भरोसा है कि पीतल के पीतल में भले कुछ भी ना हो, चूंकि कहा गया है कि इसकी तरफ देखो तो तुम्हारा जहर दूर हो जाएगा, तो हमें हुक्म मानना चाहिए। हमें नमान कोड़ी की तरह तो नहीं ना सोचना चाहिए कि यर्दन में सात गोते लगाने से क्या होगा, हमारा अपना दरिया नील वो क्या काम है कोई यर्दन से, नाराज होके चला गया। साथियों ने कहा खादम ने ये बात कही है, नबी ने, आप करके तो देखिए। कभी कभी बुरे सलाहकार हमारी जिंदगी का सत्यानाश करने में अपना किरदार बखूबी सरंजाम देते हैं, और कभी कभी कदुक्का अच्छे सलाहकार मिल जाते हैं जो हमें बचाने, नुकसान से बचाने, ठोकर खाने से बचाने, गलत रास्ता चुनने, गलत राहों पर जाने से वो हमें बचा लेते हैं। सो कितना अच्छा हो कि आज की दुनिया जिसे बाइबल बुरा जहान कहती है, ये बुरे से बुरा होता जाएगा। देख रहे हैं आप दाएं बाएं करंट अफेयर से, अगर आप हालात हाजरा से वाकफ़ हैं तो आपको समझ आ रही होगी कि जो बात 2000 साल पहले यसू अल मसीह ने फरमाई और यूहन्ना रसूल ने उसको कलम बंद किया यूहन्ना के अंजील में, और उसने लिखा रूह की तहरीक से कि दुनिया की सूरत बदलती जाती है, दुनिया बदलती जा रही है, रिश्ते बदलते जा रहे हैं, हालात बदलते जा रहे हैं, माहौल बदलता जा रहा है, तब्दीली मौसमों की तरह। आज की दुनिया में देखी जा सकती है, इसीलिए खुदा अपने लोगों से ये चाहता है कि वो ऊंग ना रहे हों, मदहोश और नीम मुर्दा और सोए हुए ना हो। क्यों बार बार लिखा जागो, अब वक्त आ गया है कि तुम नींद से जागो क्योंकि दिन बुरे हैं। जैसे जैसे दिन बुरे हैं वैसे ही हमें होशियार और बेदार होने, जागते रहने की ज़रूरत है ताकि हमारे घरों में और कलीसिया में नकब ना लगे, क्योंकि ज़माना बुरा है, वक्त तंग है। तब्दीलियाँ होती हैं दो तरह की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कई बातें हैं मुस्बत एतबार से उनमें तब्दीली की ज़रूरत होती है, और कई तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो कि मनफी तब्दीलियाँ हैं। तब्दीली किसी तरह की भी हो उसकी एक खासियत आपको नहीं भूलनी चाहिए, चेंज इज़ ऑलवेज रजिस्टर्ड। जहाँ भी कोई तब्दीली आएगी, अच्छी आएगी बुरी आएगी, कुछ लोग क्या करेंगे, वो उसकी मुखालफत करेंगे कि नहीं ये मेज़ तो यहाँ पड़ा होता था, उठा के दीवार के साथ क्यों लगा दिया। छोटी छोटी बातों में चेंज इज ऑलवेज रेजिस्टेड, इससे मुजामत होती है। अनाजील आप पढ़ के देखिए, मूसा के वक्त की रवायात, जब खुदावंद यसू मसीह ने आकर कहा मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, तो खिलाफ हो गए ना मसीह के, हवाला किसका देते थे, मूसा का। मूसा ने हमें यह कहा तू आके हमें क्या बता रहा है, नई तालीम देता है। पौलुस रसूल ऐसी रस्में बताता है जो हम रूमियों को मानना रवा नहीं है, ये हमारे मंदिरों के खिलाफ, और जो बुत बना रहे हैं लोग, जिनका बड़ा बिजनेस है स्टैचू बनाने का, बुतों के, इनका सारा कारोबार ठप करवा रहे हैं, नई तालीम दे रहे हैं। इसलिए बलवा, इसलिए उन बेचारों को मारा गया, बैंतों से पीटा गया, जख्मी किया गया और गिरफ्तार करके घसीट कर हाकमों के हवाले किया गया, मुकदमे उन पर दायर कर लिए गए। चेंज, तब्दीली की मजम्मत होती है और उसके पीछे तारीकी की कुव्वत और इंसान का गरूर। शादीशुदा जिंदगी में भी ऐसा ही है। अगर बीवी जाकर अपने शौहर को कहेगी हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता था, तो शौहर बुरा मनाएगा, ये हर वक्त अपने घर की तारीफें करती है। शौहर बताएगा हमारे खानदान में हमारी बहुएं हाँ ये काम नहीं करती हैं, ये फलाना काम नहीं करती हैं, वो अपनी वैल्यूज बताएगा। अनविलिंग टू चेंज, चेंज की मुखालफत होती है, उससे इंसान मजामत करते हैं, भले वो खुदा की तरफ से है या इंसानों की तरफ से है, लेकिन चेंज जरूरी है। सात बातें हैं जिनमें हमें बदलने की जरूरत है, जिसको मैं पॉजिटिव चेंज कहूंगा। सबसे पहली बात जिसमें हमें बदलने की जरूरत है वो है सोच, चेंज ऑफ माइंड और थिंकिंग पैटर्न्स। अपनी सोच को बदलना। सोच जो है बीज की तरह होती है, जैसा हम सोचते हैं हमारे एक्शन और रिएक्शन उस सोच की बुनियाद पर होते हैं। तो सोच दुरुस्त ना होगी, हमारी थिंकिंग जो है वही पलीद होगी, नापाक ख्यालात होंगे, बुरे ख्यालात होंगे, तो फिर हमने अच्छा मंसूबा क्या बनाना है, अच्छी बात हमने कहां से करनी है। दुनिया का सबसे बड़ा मैदान जंग इंसान का जहन है, दिमाग है, यहां ख्यालात की लड़ाई होती है। खुदा अपने रूह के वसीले से ख्यालात हमारे जहनों में डालता है, शैतान अपने जलते हुए तीर ख्यालात की सूरत में हमारे जहनों में डालता है। यहां तब्दीली की जरूरत है। रोमियो के खत के बारहवें बाब में क्या लिखा है, इस जहान के हम शक्ल बल्कि अपनी अकल नई हो जाने, क्योंकि तुम्हारी पुरानी अकल दुरुस्त नहीं थी, निजात के साथ साथ मैंने तुम्हें तुम्हारी अकल भी बदल दी है, नई सोच के साथ इस जहान के हम शक्ल ना बनो, अकल नई हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ। तो जो आदमी, जो इंसान अपनी गलत सोच को बदलने की फिक्र नहीं करता या उसके लिए वो तैयार नहीं है, तो वो अपना और बहुतों का नुकसान करेगा और दुखों बहुतों को जख्मी करेगा, उसका जेन जो है उसकी सोच दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात एटीट्यूड या बिहेवियर, रवैया, बर्ताव, सलूक, और उसके लिए बेहतर लफ्ज फिलिपियों के खत के दूसरे बाब की पांचवीं आयत में लिखा है, वैसा ही मजाज रखो, मजाज को बदलो, मजाज को बदलना, अपने रवैये को बदलना, दूसरों के साथ जैसे हम पेश आते हैं, बर्ताव करते हैं, सलूक करते हैं, उसको कलाम की रोशनी में देखकर उसको बदलना, उसकी हमें जरूरत है। तीसरी बात लाइफस्टाइल बदलना, तर्ज़े जिंदगी बदलना। लिखा गौर से देखो किस तरह से चलते हो, दनाओं की मानत चलो ना के नादानों की मानत। हमारी चाल कैसी है, चर्च में कैसे हैं, बाहर कैसे हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, कोई है ज़िंदगी में कोई तरतीब है, कोई सोने उठने खाने पीने काम आराम होमवर्क किसी चीज़ के कोई तरतीब है कि सोए तो सोए ही रहे खाए तो खाते ही गए, कोई रोज़ा नहीं है, कोई खुद इनकारी नहीं है, कोई परहेजगारी नहीं है, लाइफस्टाइल इंसान की गवाही पर असरअंदाज होता है, इंसान की सेहत पर असरअंदाज होता है। ना उठने का वक्त हो ना को खाने पीने का वक्त, ना कहीं बाहर जाने का वक्त हो ना आने का वक्त, जब मर्जी जैसे होटल में को ठहरा, जब मर्जी चले गए, जब मर्जी आ गए। लाइफस्टाइल हैज टू बी चेंज। खुदा परस्तों का लाइफस्टाइल फर्क होता है, खुदा परस्ती का इकरार करने वालों का तर्ज जिंदगी फर्क होता है, और यही फर्क खुदा के जलाल का बायस बनता है। जो पहाड़ पर बसे हुए शहर की मानद इंसानों को नजर आता है, हम किसके लिए जी रहे हैं, हमारी सरगर्मियां क्या है, हमारा उठना बैठना क्या है, हमारा चलना फिरना क्या है, लाइफस्टाइल चेंज होना है। चौथी बात, आउटवर्ड अपीरेंस, हमारी जो वजह है, तीतस के खत में खुदा परस्त औरतों का हवाला दिया गया है कि उनकी वजह मुकदसों जैसी होनी चाहिए, और इसका इतलाक मर्दों पर भी है कि एक इंसान देखते ही दिखाई दे कि यह कुरहानी शख्स है। आउटवर्ड अपीरेंस फिल्मी सितारों जैसी ना हो, शोबाज लोगों की तरह ना हो, अपना जिस्म दिखाने की कोशिश मत करिए, हयादार लबास पहनी। हमारी आउटवर्ड अपीरेंस कैसी है, दुनिया के लोगों में हम में कोई फर्क है? मीडिया के असरअंदाज होने वाले और शो बिजनेस के वसीले से इंसानी शख्सियतों पर और एडवर्टाइजमेंट इश्तहारात को देखकर मुतासर होकर उन जैसे ना बन जाएं। हम आसमानी शहरी हैं, हम खुदावन के लोग और उसकी चरागाह की भेड़े, हमारा पहनावा बहुत अहम है, हमारी अपीरेंस, हम देखने में क्या लगते हैं, क्या हमारे ऊपर जलाल का रूह मंडला रहा है, हमारे ऊपर खुदा की कुदरत और मसा ठहरा हुआ है। लिखा है पुराण, तुम्हारा सिंगार जाहरी ना हो, तरह तरह के कपड़े, मुख्तलिफ किस्म के हेयर स्टाइल, तरह तरह के जेवरात। जोर किस पे दिया गया, अपनी बातनी इंसानियत में खूबसूरत बन जाओ, खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। दुनिया के अंदर आउटवर्ड अपीरेंस की कदर है कि आप बाहर से कैसे लगते हैं, आपको नए जमाने के जदीद दौर में रहने वाले लगते हैं या आप कंजर्वेटिव हैं, दकियानूस हैं, पुराने जमाने के ख्यालात के हैं। ये हमें फैसला करना है, हमने दुनिया को खुश करना या हमने खुदा की अदालत में पेश होकर शाबाश हासिल करनी है कि तूने अपने आप को दुनिया से बेदाग रखा, तू दुनिया के रवज से मुतासर ना हुई, मुतासर ना हुआ, तूने अपनी इंफरादियत को कायम रखा, इसलिए कि तू मेरी दुल्हन थी, तू मेरी बेटी थी, तू मेरा बेटा था, तू मुकद्दस शख्स था, तू नए सिरे से पैदा हुआ, तू खुदा का बेटा, तू खुदा की बेटी थी, तूने बनकर दिखा दिया। आउटवर्ड अपीरेंस, क्योंकि इंसान जहर पर निगाह करता है ना, वो दिल पे नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहरी तौर पर हम जो भी नजर आए वो खैर है, कोई नहीं, लोग अपने तहफ्फुज के लिए इस तरह की बतेरी गढ़ लेते हैं बातें। आउटवर्ड अपीरेंस भी वजह कैसे हम दिखाई देते हैं वो भी अहम है, बातन में हम कैसे हैं वो इससे भी अहम है। पांचवी बात जिन में हमें बदलने की जरूरत है, बैड हैबिट्स, आदत। अमाल की किताब के 13वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि खुदा बनी इसराइल की 40 साल तक आदतों की क्या करता रहा, क्या लिखा है आगे लफ्ज, बर्दाश्त करता रहा। आपको पता है हमारी आदतें किस तरीके से अगले शख्स को जख्मी करती हैं। आदत होती क्या है? एनी एक्शन दैट इज रिपीटेड, ऑफन रिपीटेड। आदत जो है कोई भी काम जब आप बार 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 आप करते जाते हैं वो आदत में तब्दील हो जाता है। तो फिर बुरी सोबते जो अच्छी आदतों को बगाड़ देती है। खुदा 40 साल तक अपनी कौम की आदतों को बर्दाश्त करता रहा, मलाऊल हुआ, दुखी हुआ, उसकी तोहीन हुई, उसकी बेइज्जती हुई। हम में से कितने जो अपनी आदत के सबब से अगले का जीना हराम कर देते हैं। अनविलिंग टू चेंज, बदलने के लिए तैयार नहीं है, आदत बदलने के लिए तैयार नहीं। मेरी तो यह आदत है। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, जो बुरी आदत है हम खुदा के जोर फरियाद करें कि यह नंग मुझसे दूर हो जाए। मैं अपने आप को चीते और हबशे की तरह नहीं बदल सकता, लेकिन बदलना चाहता हूं तो मेरी मदद कर, मेरा हाथ पकड़, मेरा साथ दे। अगर मेरी किसी आदत के सबब से, आपकी किसी आदत के सबब से किसी दूसरे शख्स को ठोकर लगती है तो हम बहुत बड़े मुजरम हैं। अपने उन आदत को तब्दील करना जिसकी कोई ना कोई खैर खा इंसान ना जाने कितने अरसे से बर्दाश्त कर। आदतों का जो रविशों के जिम्मे में भी आती है उनका भी तो खुदा साहब करेगा ना। आदत को बदलने की जरूरत है। वो आदत जो खुदा के जलाल का बायस नहीं बनती, वो आदत जो किसी दूसरे शख्स को जख्मी करती, उसकी तोहीन होती, वो आंसू बहाता, वो दुखी होता, ये आदत वही है जिसके बारे में लिखा है अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। कई लोग बीवियों को मारते हैं, उनको कईयों की मैंने काउंसलिंग की, उनसे पूछा जाए, वो तो कमजोर मर्द होता है जो बीवी पे हाथ उड़ाता है, आप कमजोर मर्द हैं। नहीं, बस जब ये जबान चलाती फिर मेरा हाथ नहीं रुकता, इसकी जबान नहीं रुकती, मेरा हाथ नहीं रुकता। मैं उनको बताता हूँ कि कमजोर फिर जबान ही चलाएगा ना, वो जबान भी ना चलाए और मारे भी आपकी खाए। मैं अक्सर आपको कहता हूं ये शहरबानी, ये खुदावन की मेज हमारे लिए बड़ी बरकत का बायस है। इसमें शरीक होने से पहले हमें हदायत है कि आदमी अपने आप को आजमा ले, अपने गिरेबान में झांक कर देख। अगर इन सारी बदियों, बुराइयों और हकमाकतों से भरा हुआ इसमें शरीक होगा, फायदे के बजाय नुकसान होगा। इसलिए लिखा जो कोई खुदावन के खून और बदन में नामनासब तौर पर शरीक होता है वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसलिए इसमें शरीक होने से पहले आदमी अपने आप को आजमा ले, टेस्ट कर ले, गिरेबान में झांक ले किसी बात में मैं खुदा की बेइज्जती और तौहीन का मुर्तकिब तो नहीं हो रहा, मैं अपने अंदर गुनाह रखते हुए तो ये बरकत पाने की नाकाम कोशिश तो नहीं कर रहा, मैं इकरार किए बगैर, पछताए बगैर, माफी मांगे बगैर तो खुदावंद के बदन और खून में तो नहीं शरीक हो रहा। इससे फायदे की बजाय उल्टा नुकसान ही होगा। वो मैं नहीं कहता, कलाम में लिखा, करंथियों के पहले खत। छठी बात, सोबत को बदलना, कंपनी, एसोसिएशन। किसके साथ हम दिन रात ज्यादा वक्त दिखाई देते हैं, किसके साथ हम खड़े, किस काज की खातिर हम खड़े। क्यों लिखा, दूसरे ग्रंथियों के छठे बाब में लिखा है, उनमें से निकल आओ, बेईमानों के साथ ना हवार जुए में मत जुकतो, ऐसी सोबतों में से निकल आओ तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा बाप होऊंगा, खुदावन खुदा फरमाता है। दूसरा ग्रंथियों छठे बाब में घर में जाके पढ़ लो, सोबत बदलनी पड़ती है, सोबत मुतासर करती है। अंग्रेजी का एक मुहावरा, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी की पहचान इससे होती कि इसका हल्का या बाप क्या, किन में ये बैठता है, इसका ज्यादा वक्त किस तरह के लोगों में उठने बैठने में गुजरता है जिसमें ये खुश होता है या होती है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। क्यों लिखा है, ईमानदारों के लिए, कि आपस में जमा होने से बाज ना आओ जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। हमारी रफाकत शराकत, हमारा मेल जोल खुदा प्रस्त लोगों के साथ होना चाहिए। कोई अच्छी बात ही सीखेंगे, कोई ईमान अफरोज बात सीखेंगे, ईमान में तकवीयत पाएंगे। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अपनी कंपनी, अपनी एसोसिएशन, फिर कई चीज़ें। सातवीं बात, रसूमात। कई हिंदुओं की रसूमात हैं वो हम करते जा रहे हैं, कई गैर मसीहों की हैं वो हम करते जा रहे हैं। पौलुस रसूल पर अमाल की किताब, अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं कि उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि हमने इसको अपने मुंह से ये कहते सुना है कि यीशु नासरी आएगा और वो उन सारी रसूमात को बदल देगा जो हमें मूसा ने दी है। तो वो समझते थे मूसा इतना बड़ा खादम है, यीशु कौन होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग मूसा की दी हुई रसूमात जो है वो उसको बदल दे, और जिसकी पौलुस और यहुन्ना और पत्रस मुनादी करते। लेकिन अच्छी रवायात जो खुदा के कलाम से मुतसादम नहीं है, कंट्राडिक्ट नहीं करती हैं, मुतसादम नहीं है, उन पर हमें कायम रहना चाहिए, क्योंकि हम रसूलों और नबियों की नींव पर तामीर किए गए हैं। लेकिन ऐसी रवायात जो खोखली हो, जो बेमानी हो, जिसमें सिर्फ दिखावा हो, दुनियादारी हो, उनको भी बदलने की जरूरत है। अनाजील देखिए,